श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 11 से 27
We will chant text 27 together.
हम 27 श्लोक का उच्चारण साथ में करेंगे.
First I'll begin with text 11. Takarad api betavyang chinang vishayanam api yataher manasha shobas tata tasya kriter api. Just as one is immediately frightened upon seeing a live serpent, or even the form of a serpent, one endeavoring for self-realization should similarly fear a materialistic person and a woman. Indeed, he should not even glance at their bodily features. Srila Prabhupada says, this is a quote from Sri Chaitanya Chandradaya Nataka. Let us recite Guru Parampara prayers, please. Indeed, he should not even glance at their bodily features.
श्लोक संख्या 11 का अनुवाद. जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखते ही डर जाता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकवादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए. उसे उनके शारीरिक लक्षणों पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए.
This is a quotation from Sri Chaitanya Chandradaya Nataka 824.
ये श्लोक श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 8:24 से लिया गया है.
It appears from the statement by Chaitanya Mahaprabhu that Srila Prabhupada's books have to be completely rewritten. You heard me. They have to be rewritten.
इस कथन से हम समझ पा रहे हैं ये चीज कि श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उनको दोबारा से लिखना होगा.
It's likely somebody may do this, you know, rewrite Prabhupada's books.
हो सकता है कोई ऐसा करेगा कि दोबारा से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को लिखेगा.
Because the statement about women is not politically correct.
क्योंकि ये जो स्थिति जो यहाँ पे बताया गया है स्त्रियों के बारे में वो सही नहीं है.
I received an email from a devotee who had quoted from the teachings of Kapiladev.
मुझे एक भक्त का मेल मिला जिसमें उसने कपिल भगवान की शिक्षाओं से कुछ उद्धृत किया था.
It contained some criticism of women.
उसमें माताओं का स्त्रियों का अवलोहन किया गया था.
Because it's not politically correct. Never mind what the Shastra says. It doesn't matter what the Shastra says. It's not politically correct. Period. Understand?
ये जो सिद्धांतिक रूप से हो सकता शास्त्रों में दिया हो लेकिन ये वैसे सही नहीं है.
It doesn't matter if it's coming from Kapiladev, it doesn't matter if it's coming from Prabhupada. You can't say anything, even suggesting, you know the word insinuate? No. Suggesting indirectly criticism of women. Finished. You can't do like that. It's considered a maha-aparad.
चाहे वो शास्त्रों में दिया हो कपिल भगवान ने ऐसा दिया हो लेकिन हम उसको चाहे उसको उसको हम स्त्रियों की निंदा नहीं कर सकते.
This is ISKCON in 2019. It wasn't like this when Prabhupada was on the planet, not even close.
जब श्रील प्रभुपाद स्वयं इस धराधाम पर थे तब ऐसा नहीं होता था.
So this devotee quoted directly from Prabhupada's books, from Kapiladev and from Srila Prabhupada, but because it had some criticism of women, he published what amounts almost a retraction.
इस भक्त ने एक पूरा आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने स्त्रियों का निंदा किया था और बहुत सारे कोट उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे बुक्स से.
A maha apology in case some women took offense on reading Prabhupada's statement and by reading the statements by Kapiladev. In case some woman might take offense, he wrote a whole apology and sent it out on the net. This is going on.
ताकि कोई स्त्रियां उनको बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने उन स्टेटमेंट को देने के बाद जो कपिल भगवान के स्टेटमेंट थे और प्रभुपाद के थे उन्होंने माफी मांगी नेट के ऊपर.
We cannot change the Shastra or Prabhupada because it's not politically correct in the year 2019 and onwards. We can't change Prabhupada's books like that. We can't do it.
हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को और शास्त्रों को बदल नहीं सकते चाहे वो 2019 में है तब भी हम उसको बदल नहीं सकते.
So he tried to qualify the statement, the criticism by saying that's of ordinary women, not of Vaishnavis. Okay, that's fine.
तो वो ऐसा करके उन्होंने बताया कि ये जो स्टेटमेंट जो दी गई है शास्त्रों में ये साधारण स्त्रियों के लिए है लेकिन वैष्णवों के लिए नहीं है.
But we're talking about men that are in renunciation. We're not talking about everyday man.
हम कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं.
The story is there in Chaitanya Charitamrita about Haridas Thakur, Junior Haridas.
चैतन्य चरितमृत में छोटे हरिदास की कथा आती है.
It's arguably the heaviest pastime of Mahaprabhu in the entire Chaitanya Charitamrita. In other words, what I mean by that is it's hard to digest, frankly.
पूरे चैतन्य
चरितमृत it's hard to digest. Mahaprabhu was so strict, so harsh with Junior Haridas. It's hard to digest, to be honest with you.
पूरे चैतन्य चरितमृत में सबसे मुश्किल और सबसे मुश्किल समझने का ये जो प्रसंग है जब छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु उसको सजा देते हैं तो बहुत मुश्किल है ये समझना.
But Mahaprabhu ostracized him. You know the word ostracized? Banned him from his association.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को अपने संघ से दूर कर दिया, बाहर निकाल दिया.
Junior Haridas was so depressed at this that he committed suicide. But he committed suicide in the Ganga. Somehow it was, you could say, sattvic suicide. We don't recommend.
छोटा हरिदास से उन्होंने इतना दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली गंगा में कूदकर.
But there we see a rather innocent mistake made by Junior Haridas. It was an innocent mistake in one sense.
तो अगर देखें तो बहुत ही नादान सी उनकी गलती थी छोटा हरिदास की.
But Mahaprabhu was such a strict acharya, he would not forgive him because it was a so-called innocent mistake. He wouldn't forgive him on that basis.
लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सख्त आचार्य की भूमिका निभा रहे थे कि वो उनको उन्होंने माफ नहीं किया चाहे वो बहुत नादान सी
What did Junior Haridas do that was so terrible that he was so depressed at being banned from association with Mahaprabhu that he did suicide? He did suicide by drowning in the Ganga. But so that's sattvic suicide, but not like, you know, these days they smell automobile fumes from the exhaust pipe. And that's modern suicide. But this was transcendental suicide, you know.
तो छोटा हरिदास ने ऐसा क्या किया था कि उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संघ से निकाल दिया और उनको ऐसा आत्महत्या करना पड़ा. हालांकि उनका जो आत्महत्या थी आज के आत्महत्या के तरह नहीं था. महाराज कह रहे हो सात्विक आत्महत्या था. आजकल लोग आत्महत्या करते हैं, वो गाड़ी के धुएं को सूंघकर आत्महत्या करते हैं. उन्होंने तो गंगा में कूद के आत्महत्या किया.
Junior Haridas was a beautiful, sweet singer.
छोटा हरिदास थे वो बहुत सुंदर संगीतकार थे.
Apparently he was a sannyasi.
वो सन्यासी थे.
I don't remember much emphasis on that, but it seems that he was sannyasi. Do you recall? He was sannyasi. Yeah, so that's the issue. He was a sannyasi.
तो वो छोटा हरिदास एक सन्यासी थे.
So in this way, standard is higher. Must be. If its standard is not higher than ordinary, there's no such thing as ordinary devotee. But supposing there were such a thing as an ordinary devotee, if the standard for sannyasi is not higher, then it's just show.
अगर सन्यासी के लिए जो जो सिद्धांतों का पालन है, नियमों का पालन है, अगर वो सख्त नहीं होगा तो खाली दिखावा होगा.
So therefore, Mahaprabhu was so strict with him. But what did Junior Haridas do that was such terrible aparad? By external calculation only, you see. By external calculation, it appeared to be maha aparad. But what, from another viewpoint, was it really?
तो छोटा हरिदास ने ऐसा क्या किया था कि महाप्रभु ने उसको ऐसी कड़ी सजा दी? अगर भारी रूप से देखा जाए तो बहुत बड़ी तो लग सकता है कोई अपराध किया हो, लेकिन असली में कोई बहुत बड़ी उन्होंने गलती नहीं की.
Junior Haridas went to an older woman, to an older Mataji. Mataji is not correct anymore either, you know. These days, I'm not joking, a lot of Vaishnavis these days, if you say Mataji, you know, mushroom cloud comes out of the top of their head, you know. Many of the Vaishnavis don't want to be called Mataji anymore. I'm telling the truth.
छोटा हरिदास ने क्या किया था, वो खाली एक बुजुर्ग माता जी के पास गए थे. आजकल महाराज बता रहे हैं कि जब स्त्रियों को माता जी बोलते हैं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको बहुत क्रोध आ जाता है.
So even Malati, Jibisi, when she was giving her offering at he was asked to give her offering in Vrindavan, Prabhupada's disappearance day festival.
जब श्रील प्रभुपाद की शिष्या मालती देवी वो प्रभुपाद को अपना ऑफरिंग्स दे रही थी प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस पर.
So Panchagora, the temple president, he was the MC, master of ceremonies. Were you there?
Panchagora Prabhu, jo Vrindavan Mandir ke adhyaksh hain, wo wahan pe sab sab stage pe dekh rahe the.
They all alternate the men and women.
तो वो एक बार पुरुष को बुला रहे थे और एक बार स्त्रियों को बुला रहे थे.
It was time for Vaishnava. So Panchagoura, he called. He said, Malati Maharaji.
पंचकोट प्रभु ने जब स्त्रियों को बुलाया तो उन्होंने बुलाया मालती माता जी.
You could see a volcano coming out of the top of her head. I'm not joking. Flames. Do you remember? Do you remember? You could see volcanic flames coming out of the top of her head.
तो महाराज कह रहे हैं हम देख सकते थे कि उनके सिर से ऐसे धुआं निकल रहा था.
She was offended.
उनको बुरा लगा ये सुनकर.
And so then, very sarcastically, very dry.
तो बहुत ही sarcastically, व्यंग रूप से उन्होंने ऐसा बोला.
She said, very, you know, sarcasm.
तो बहुत ही व्यंग करते हुए उन्होंने बोला.
She said, Prabhupada gave me the name Malati Devi Dasi.
उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने मुझे नाम दिया मालती देवी दासी.
And she wanted to say more. You could tell by looking at her demeanor that she wanted to give a speech, but she checked herself.
वो और बोलना चाहते थे ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया.
So Prabhupada used to say, "These things are going on."
प्रभुपाद कहते थे कि ये चीजें हो रही हैं.
I'm trained. My god sister Malati, I'll never call her Malati. Never.
महाराज कह रहे हैं कि मैं उनको कभी मालती देवी माता जी
उनको
मालती कभी नहीं कहूंगा.
Elevated soul, so if she wants to be called Malati or she wants to be called Vaishnavi, I'm okay with that. That's fine because I'm not going to make offense against her, certainly not. Or other Vaishnavis, you see, who are feeling like that. Some are feeling like that, not all of them, but some are feeling like that.
वो बहुत उन्नत वैष्णव है तो अगर वो चाहेंगे चाहते हैं कि उनको हम किसी और मालती नाम से मालती देवी नाम से बुलाएं तो महाराज कहें मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है.
What happened with Junior Haridas? He went to beg rice from, I think it was Sikki Mahiti, wasn't it? Yes, Sikki Mahiti. She was a middle-aged woman. Let's say she was at least 50 years old.
तो छोटा हरिदास चावल मांगने गए सिक्की महिती से जो एक वृद्ध महिला थी करीब 50 साल की.
But I heard a rumor that she had an attractive young daughter. Do you know? I heard a rumor she had an attractive young daughter, but I don't know for a fact.
ऐसा कहते हैं कि उनका जो सुंदर थी दिखने में, उनकी एक सुंदर बेटी.
You ever heard that she had an attractive young daughter in the house? Yeah. So it's just a rumor. I can't substantiate that.
ऐसा सुना है कि उनकी एक पुत्री भी थी जो सुंदर थी.
So she was a middle-aged woman, you know. Not only that, she was a great devotee. She was not an ordinary.
तो वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी. वो भगवान की बहुत शुद्ध भक्त थी.
She is said to be combined incarnation.
उनको मिश्रित अवतार बताया जाता है.
Combined incarnation. Arjuna was one of them, isn't it? You don't remember? Exalted, combined incarnation. Not ordinary jiva. Not ordinary soul. Not ordinary devotee.
तो वो कोई साधारण जीव नहीं थे. वो बहुत बहुत उन्नत वैष्णव थे. वो कंबाइंड इनकार्नेशन थे भगवान के पार्षदों.
Still, sarcastically, Mahaprabhu said, "Oh, this is very nice, Junior Haridas. Where did you get this rice? You know, it was extraordinary high quality. Where did you get this rice?"
श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास से व्यंग करते हुए पूछा कि ये इतना अच्छा चावल है, तुम ये चावल कहाँ से लेके आए?
He knew that Junior Haridas couldn't come up with that rice on his own. He had to get it some from Mataji. From Mataji.
तो चैतन्य महाप्रभु को पता था कि वो स्वयं तो अपने आप से वो चावल नहीं ला सकते. वो किसी माताजी से मांग कर लाए.
So then he said where he got it from. I got it from Sikki Mahiti, an older middle-aged woman. Maybe she's 50, maybe even 55. She was not a young woman.
तो छोटा हरिदास ने बताया कि वो सिक्की महाती से लेके आए हैं चावल. तो वो कोई बहुत जवान स्त्री नहीं थी. वो बहुत वृद्ध थी.
But from that, because Junior Haridas had gone there alone to fetch that rice, to beg the rice, he'd gone there alone. He didn't go with association. That was the problem. He didn't go with any association. He went alone.
समस्या ये थी कि छोटा हरिदास अकेले वहां पे उनसे चावल मांगने के लिए गए थे. वो भक्तों के संग में नहीं गए थे.
Strictly forbidden for a sannyasi. Strictly forbidden for a sannyasi.
Sannyasi ke liye bilkul hi mana hai, varjit hai.
So when he inquired, when he confessed where he got the rice from Sikki Mahiti, Then Mabu banned him. And of course he was broken hearted.
जब उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु को कि वो शिखी महती से वो चावल लेके आए हैं तो महाप्रभु ने उनका बहिष्कार कर दिया और उनका हृदय टूट गया।
But on the absolute plan, Mahaprabhu did not reject him.
अगर हम
on the absolute plan,
तो अगर वैसे देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका बहिष्कार नहीं किया।
As an extremely strict acharya, he rejected them on that level.
सिर्फ बाहरी रूप से एक 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 सख्त आचार्य की भूमिका निभाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहिष्कार किया भारी रूप से।
All the devotees could hear Junior Haridas singing very sweetly without a gross body. In a subtle body, he was singing for the pleasure of Mahaprabhu and, you know, he was for the pleasure of Sri Radha Krishna. Junior Haridas was singing without a gross body. And they could hear his voice and they knew who it was because they knew what he'd done.
क्योंकि सभी भक्त सुन सकते थे छोटा हरिदास को शरीर छोड़ने के बाद कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए और राधा कृष्ण के लिए गाते थे अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर भी।
One day Mahaprabhu said, "Where's Junior Haridas?"
एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि छोटा हरिदास कहाँ है।
Pretty sarcastic thing for him to say.
बहुत ही व्यंग रूप से तरीका है पूछने का।
He knew perfectly well what had happened to Junior Haridas, and he gave his blessings for that.
उनको पता था कि क्या क्या हुआ है छोटा हरिदास को।
He did not lament on hearing what had happened to him, that he'd done suicide in the Ganga. He did not lament. Mahaprabhu did not lament. He didn't retract it. He didn't apologize. Nothing like that. No.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने शोक नहीं किया इसके लिए कि वो उन्होंने अपना आत्महत्या कर ली है।
So then in modern pastimes we see that when the I've told this before but I'll tell it again because many of you may not have been here.
तो ये एक आज का ऐसा यही लीला आज के समय पर है। मैंने कई लोगों को बता चुका हूँ बट फिर भी बताऊंगा।
In Mayapur, when the Lotus building was under construction still, it was the only building at that time. That's the original building where the original building that the current Radha Madhava Tapuram was not there at that time.
तो मायापुर में उस समय सिर्फ लोटस बिल्डिंग था और वही एकमात्र बिल्डिंग था जो पूरे मायापुर में और वहां पे राधा माधव वहां पे विराजमान थे उस समय।
So the temple room at that time and Chota Radha Madhava that are still there, they were on the ground floor. The temple room was on the ground floor at that time, where located where that dioramas, half dioramas display, you know, half means they're sticking out of the wall halfway and beautifully painted. And that museum now, that's where the old temple room used to be when Prabhupada was on the planet.
तो मायापुर में पहले जो टेम्पल रूम होता था वो वहां पे था जहाँ पे अब हम देखते हैं कि लोटस बिल्डिंग में नीचे बहुत सारे डायरोमास और बहुत सारी चित्रकारी बनी हुई है, म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पे राधा माधव का विग्रह
है। Films, the old films, when Prabhupada, Radha Madhava were in a small temple shrine in the center of the room, which is tradition.
राधा माधव मंदिर के बीच में छोटे से एक ऑल्टर के अंदर थे। हमने उसमें वीडियो में देखा होगा पुरानी जो वीडियो
है today,
और सारे भक्त राधा माधव की परिक्रमा करते हैं।
When Prabhupada come to the bell, clang, 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 he'd ring the bell.
और जब प्रभुपाद परिक्रमा कर आते थे तो वो बेल जो घंटी लगी थी उसको बजाते थे।
He'd raise his hand, like, all he did was raise his hand,
और इसलिए प्रभुपाद अपना हाथ उठाते थे ऐसे।
The devotees would go mad.
और जो भक्त है वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं।
They jump a meter off the floor.
वो जमीन से एक मीटर ऊपर कूद जाते थे।
A meter is about 3 feet. A meter is approximately 3 feet.
एक मीटर 3 feet के करीब होता है।
So the devotees so ecstatic. Everybody just Prabhupada ringing the bell caused everyone to be super ecstatic.
जब श्रील प्रभुपाद वो घंटी बजाते हैं तो सब भक्त बहुत ही उत्साह में आ जाते हैं।
So that was the old temple room.
तो वो पहले का पुराना temple room था।
Radha Madhava, Chota Radha Madhava. They were so small; they're about almost a meter tall, but they are small compared to the current giant Radha Madhava.
तो छोटे विग्रह थे राधा माधव के। अभी जितने बड़े विग्रह हैं वैसे नहीं थे, छोटे विग्रह थे।
By the way, the current giant Radha Madhava, they were made that size on Prabhupada's order.
तो अभी जो हम राधा माधव देखते हैं मायापुर में जो बहुत विशाल हैं, वो श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार ही बनाए गए।
Otherwise, how would the devotees dare to make deities that size? You know, because Prabhupada ordered, because he could foresee Trikalagya, he could see in the future how they were going to be preside over the entire Navadvip Dham. He could see that in the future. And he created that.
अगर प्रभुपाद का आदेश नहीं होता तो भक्त ऐसा कैसे बना सकते थे क्योंकि प्रभुपाद देख सकते हैं प्रभुपाद त्रिकालज्ञ थे वो देख सकते थे कि आगे जाके पूरे नवदीप के लिए ये राधा माधव वहां पे रहेंगे
So we should be very careful. Of course, we should be very respectful always men, whether they're sannyasi or whether they are brahmachari or householder, they should always be respectful of all Vaishnavis. Of this there's no doubt. There was a big mistake in our movement when women were severely disrespected. That's a historical fact.
हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए और बहुत ही हमें सतर्कता से हमको व्यवहार करना चाहिए चाहे कोई ब्रह्मचारी है चाहे कोई गृहस्थ है चाहे कोई सन्यासी है कोई भी है उन सबको स्त्रियों से बहुत आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए हमारे इस आंदोलन में पहले अच्छी तरीके से स्त्रियों को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता
Thousands of offenses were made even by sannyasis and senior men at that time. So it was terrible. It was wrong. It was dead wrong.
बहुत सारे अपराध हुए हैं काफी सारे सन्यासी और बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा भी जो गलत
Many of those sannyasis fell down completely, apparat.
और ऐसे बहुत सारे सन्यासी तो जो पूरी तरीके से इनका पतन हो गया उस अपराध के कारण
If somebody of devotees of Vaishnava, that's no excuse for apparat. You see, but the mentality was completely wrong. The mentality was that they were almost spitting on women. This is not what Prabhupada is presenting here.
तो वो बहुत ही गलत धारणा थी उस समय वो बिल्कुल अवहेलना कर रहे थे स्त्रियों का तो वो गलत था
So it's a very radical statement one should fear a materialistic person and a woman This is a statement of Krishnadas Kaviraj Goswami What can we do edit it out maybe somebody will do It's not politically correct
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये कथन है कि हमें भौतिकवादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है
But this applies primarily to those men who are on the path of renunciation Brahmacharis and sannyasis but it doesn't say like that that it's not limited any man that can be good distracted we see in the history of our movement and this one we see hundreds of affairs have taken place between men and married women hundreds of affairs maybe that's not fair to say but a large number of affairs have taken place with married women so that's no restriction you understand women period
so dekhne mein lag sakta hai ki ye jo sandesh diya ja raha hai ye vairagiyon ke liye diya ja raha hai but aisa koi rok nahi hai hum dekhte hain ki hamare is andolan mein bhi bahut sare aise चीजें हुई हैं जिसमें कि वैवाहिक पुरुष और स्त्रियों का संबंध और विवाह के बाहर हुआ है
Does not this statement by Krishnadas Kaviraj Goswami is not limited to sannyasis and brahmacharis he doesn't say that
तो ये जो कथन है ये सिर्फ सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए ही नहीं है
He doesn't say all sannyasis and brahmacharis should be very careful about associating with the opposite sex that you know he could have said that That's not what he said. I'm sorry. Better edit the book. Better change it.
कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो सकता है कह सकते थे कि सब सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसे भौतिकवादी लोगों से लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कहा सबके लिए ये कहा है
And this is a quotation from Sri Chaitanya Chandradaya Nataka. So what should we do? We should edit out Sri Chaitanya Chandradaya Nataka. We should cut it out. We should leave it out because it says something negative about it. Ladies, should we do like that?
ये श्लोक श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक से लिया गया है तो हम क्या करें इस चैतन्य चंद्रोदय नाटक को हम हटा दें उसे क्या क्योंकि इसमें ऐसा कथन दिया हुआ है
This is a very heavy shastra, Sri Chaitanya Chandradaya Nataka. It's a heavy shastra, so we just have to accept. But that's not a license to make offenses against Vaishnavas. Try to understand. There's a distinction here.
ये बहुत ही उत्कृष्ट शास्त्र है चैतन्य चंद्रोदय नाटक उसमें एक कथन दिया हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपराध करें स्त्रियों के प्रति और किसी के प्रति
So it's just that across the board there's supposed to be a restriction between association of men and women it's not that if a man's married man that he could freely associate with other women that's also forbidden that's the point
इसका अर्थ ये है कि स्त्रियों और पुरुष के जो फ्रीली मिलना उसमें रोक होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई विवाहित है तो वो फ्रीली रूप से स्त्रियों से या पुरुषों से मिल सकते हैं
वेरी डेंजरस वेरी रिस्की फॉर एनी मैन just to freely associate with other women, even if he's married. Point is that this statement is to caution against such things. Is it not?
ये जो श्लोक है ये हम सबको सतर्क करने के लिए है. ऐसा नहीं है कि खाली जो विवाहित हैं उनके लिए नहीं है. नहीं,
but you go to Mayapur or Vrindavan, you will see so many men and women freely mingling, regardless whether they are wearing saffron or whether they are grihastha or whether they're bachelor. That regardless of their ashram, nowadays there's a lot of bachelor ashram.
आजकल हम देखते हैं मायापुर वृंदावन में कि बहुत सारे गृहस्थ ब्रह्मचारी या फिर जो लोग इन्होंने विवाह नहीं किया वो फ्रीली स्त्रियां और पुरुष आपस में मिल रहे होते हैं.
Of course, there's no such thing as bachelor ashram and varnashram dharma. This is a modern concoction.
तो वर्णाश्रम धर्म में ऐसा कोई आश्रम नहीं है बैचलर की शादी ना करना.
So nowadays in modern ISKCON, those that are in bachelor and they in that adhikar of bachelor, then either they should put on saffron and surrender to brahmachari life, or they should get married. But you see, there is no such thing as bachelor ashram, so we can't manufacture. Prabhupada said hundreds of times, he said, don't manufacture.
तो शास्त्रों में कहीं पे भी ऐसा bachelor ashram का नहीं दिया गया जिसमें हम विवाह ना करें. अगर किसी को ऐसा रहना है तो उसे या तो उसे सैफरन धारण करना चाहिए और ब्रह्मचारी आश्रम लेना चाहिए या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए.
सो मेनी टाइम्स प्रभुपाद एंड शास्त्र सेज बटर फायर.
इसलिए प्रभुपाद बहुत बार शास्त्रों को उद्धृत करके बोलते थे कि मक्खन और अग्नि
मेन कंपेयर्ड टू बटर.
पुरुषों को मक्खन से तुलना की जाती है.
Women are compared to fire.
स्त्रियों को अग्नि से तुलना की जाती है.
What happens when butter is in contact with fire?
क्या होता है जब मक्खन अग्नि के संपर्क में आता है?
It melts.
वो पिघल जाता है.
So men naturally become soft-hearted in the presence of women. They become attracted. This is natural.
तो ये स्वाभाविक है कि पुरुष जो है वो स्त्रियों के संपर्क में आकर वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं.
But it has to be controlled.
लेकिन उसको नियंत्रण करना होगा.
So I've told the story of Junior Haridas.
जैसे हमने अभी कथा सुनी छोटा हरिदास की.
Not a story, it's a historical narration, a historical fact.
ये खाली कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है.
But I didn't finish saying about Prabhupada.
लेकिन मैंने अभी बताया नहीं आपको प्रभुपाद क्या.
How he demonstrated similar strictness.
कैसे चला प्रभुपाद ने ऐसा ही सख्ती दिखाई.
When the lotus building was under construction still.
जब लोटस बिल्डिंग अभी बन रही थी.
At that time there was no other building in Mayapur.
उस समय और कोई भी और बिल्डिंग नहीं थी पूरे मायापुर.
Except what are shops along the front wall now. Those were at that time the householder devotees from abroad were staying in those. They were used for housing outsiders at that time.
अभी जहाँ पे मायापुर में हम देखते हैं बहुत सारी शॉप्स हैं मंदिर के अंदर, वहाँ पे पहले गृहस्थ भक्त रहते थे जो उनके घर.
But the, all brahmacharis sannyasis were in lotus building because that's all there was.
और सारे जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे वो लोटस बिल्डिंग में रहते थे क्योंकि वो खाली एक ही बिल्डिंग थी उस समय.
Srila Prabhupada must have been on the balcony.
प्रभुपाद बालकनी पर खड़े थे.
He was sitting out there.
प्रभुपाद वहाँ पे बैठे थे.
Balcony means porch.
बालकनी में प्रभुपाद बैठे थे वहां पे.
Is that right? You got the Hindi right? So then he saw us, see up on the roof. On the roof was not completed yet. There were the cement and brick pillars, and the sannyasis had rigged a camp up there in between the pillars. It was not finished.
तो उस बिल्डिंग की छत पर अभी पूरी छत पूरी नहीं हुई थी, खाली कुछ खंभे ही थे. उन खंभों से सन्यासियों ने वहां पे टेंट बना दिया था.
So Prabhupada saw a woman walking up the stairs.
इसलिए प्रभुपाद ने देखा एक माताजी थी, वो उस सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी.
By herself.
स्वयं खुद जा रहे थे ऊपर.
Prabhupada knew there was no one except sannyasis on the roof.
प्रभुपाद को पता था कि छत पे सिर्फ सन्यासी रहते हैं और कोई नहीं रहता.
He immediately stopped this woman. A nice devotee, a disciple. But he stopped her.
तो बहुत अच्छी भक्ति के प्रभुपाद उनको रोक दिया.
Where are you going?
आप कहां जा रहे हैं?
Well, I'm going to see such and such Maharaj up on the roof.
मैं इन महाराज से मिलने जा रही हूं छत के ऊपर.
He said, "Where is your husband?"
प्रभुपाद ने उनसे पूछा, आपके पति कहां हैं?
She replied, "Oh, he couldn't come."
तो उन्होंने कहा, वो आ नहीं पाए.
Then Prabhupada said, "Then you cannot go up there."
प्रभुपाद उनको बोला, आप नहीं जा सकते फिर ऊपर.
A single woman mingling with sannyasis. This is Prabhupada's instruction, founder Acharya. If you want to criticize Prabhupada, if you want to call him sexist, go ahead and see what it does for your bhakti lata bija.
तो ये श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य का कथन है. अगर आप उनको नहीं मानना चाहते तो आपकी जिम्मेदारी.
This is true history. I'm not making this up. It's not manufactured. It's a fact.
ये इतिहास है जो सही में हुआ है. मैं इसको बना नहीं रहा, ये सत्य है.
Prabhupada stopped her. You cannot go up there.
प्रभुपाद ने उनको रोक दिया कि आप ऊपर नहीं जा सकते.
So if you think that's sexist, then that whoever thinks that's sexist is doomed.
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो प्रभुपाद ऐसा गलत कर रहे हैं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा.
So I think you get the point.
मुझे लगा है कि आप समझ गए हैं इस चीज को.
It's clear. Respect all Vaishnavas. Never make offenses. They are must be counted as Vaishnavas, and Vaishnavis must be counted. All women must be counted as Vaishnavis who are devotees.
हमको सभी स्त्रियों को जो वैष्णवी हैं उन सबको हमको आदर देना चाहिए पूरी तरीके से.
At the same time, restrictions are there because this is the Vedic system. We are not establishing in our society the American way of life. This is going on just in other ways. But we're not supposed to establish the American way of life. Not at all. We're supposed to establish the Varnashram Dharma Vedic way of life. That's what Prabhupada gave and that's what he expects.
तो हमें आदर देना चाहिए सभी वैष्णवियों को, लेकिन फिर भी हमें कुछ हमें रिस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए. हमें अपने इस इंस्टीट्यूशन में इस आंदोलन में अमेरिकन तरीका नहीं लेके आना है. हमें यहाँ पे वैदिक तरीका लेके आना है. प्रभुपाद ने हमको वही सिखाया है.
प्रभु विद द ग्रे शर्ट. इज इट क्लियर?
आपको क्लियर हुआ प्रभु जी?
इट्स क्लियर? यू अंडरस्टैंड सर?
Yes, समझ आया आपको?
So this is Prabhupada and Shastra. We'll go on to the next first.
Agla shlok.
Arche bata punarapi mukena amibe kahayare tabe amaya eta na dakibe. Bhattacharya, if you continue to speak like this, you will never see me here again. Therefore, you should never let such a request come from your mouth.
हे भट्टाचार्य, यदि आप इसी तरह मुझसे कहते रहोगे तो आप मुझे पुनः यहाँ कभी नहीं देखेंगे. अतः आप कभी भी ऐसा निवेदन अपने मुख से न करना.
So what's going on here is Sarvabhum Bhattacharya, an infinite, a intimate associate of Mahaprabhu, he and all the devotees were trying to convince that Mahaprabhu should meet with King Pratyabhruja. We were telling him, look, he's not an ordinary king, he's a great devotee of the Lord. And Mahaprabhu previously says, more or less, he's saying, although it's correct that the king is a great devotee, but still he's considered a venomous snake. That's heavy also. But these days we don't have to worry about kings in our movement very much.
तो ये प्रसंग ऐसा चल रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के बाकी जितने संगी हैं, वो महाप्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि वो प्रतापरुद्ध महाराज से मिलें, क्योंकि प्रतापरुद्ध जो हैं वो कोई साधारण राजा नहीं है, भगवान के भक्त हैं.
So on verse number 10, again, Krishna Shravas Goswami is quoting Mahaprabhu saying, similarly, even though a woman be made of wood, one becomes agitated simply by touching her force. Should we edit that out? Her form, not force. By touching her form, a wooden form, one becomes agitated. So should we cut that out, edit it?
दसवें प्यार में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं, ये सच है कि राजा महान भक्त है, फिर भी उसे विषैला सांप ही समझना चाहिए. इसी प्रकार स्त्री चाहे काठ की ही पुतली क्यों ना हो, उसके रूप का स्पर्श करने के मात्र से मनुष्य विचलित हो उठता है. महाराज कह रहे हैं, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? क्या इस कथन को काट देना चाहिए?
So, Sarvabhum Bhattacharya and all the devotees, they were trying to convince Mahaprabhu to associate with King Pratyabhruja and give him his darshan, and he refused, simply because he was a king. He said, I know he's a great devotee, but I'm sorry, he's a king, and that spoils everything. That's what position Mahaprabhu was taking very strict.
सभी भक्त महापुरुष निवेदन कर रहे थे कि वह प्रतापरोज राजा को अपना दर्शन दें, लेकिन महापुरुष ने कहा मैं जानता हूं कि वो भक्त है लेकिन वो अभी राजा है, तो इसलिए मैं उसको दर्शन नहीं दे सकता.
So Mahaprabhu said, Bhattacharya, if you continue to speak like this, you will never see me here again.
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे भट्टाचार्य, यदि आप इसी तरह मुझसे कहते रहोगे तो आप मुझे पुनः यहाँ कभी नहीं देखेंगे.
Therefore, you should never let such a request come from your mouth.
अतः आप कभी भी ऐसा निवेदन अपने मुख से न करना.
So then Sarvabhuma Bhattacharya was afraid by this harsh statement by Mahaprabhu.
भट्टाचार्य इस कथन से डर गए महाप्रभु के.
Being afraid, Sarvabhuma Bhattacharya returned home and began to meditate on the matter.
सार्वभौम डर कर अपने घर वापस चले गए और इस विषय पर मनन करने लगे.
At this time, Maharsh Pratibhruja, who is the king being discussed here, arrived at Jagannath Puri Purushottama, accompanied by his secretaries, ministers, and military officers. And he went to visit the temple of Jagannath.
उसी समय महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम पधारे और वे अपने मंत्रियों, सचिवों तथा सैनिक अधिकारियों समेत जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने गए.
Prabhupada explains it appears that Maharaj Pratibhruja used to live in Cuttack, his capital. Later he shifted his capital to Khurda, a few miles from Jagannath Puri. Presently there is a railway station there called
तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज प्रताप रुद्र अपनी राजधानी कटक में रहते थे. बाद में उन्होंने अपनी राजधानी जगन्नाथपुरी से कुछ मील दूर खुर्दा में स्थानांतरित कर ली. आजकल वहाँ खुर्दा रोड नाम का एक रेलवे स्टेशन है.
So all throughout the Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada gives the specific train stations where you get down to go to a place of pilgrimage.
चैतन्य चरितमृत में बहुत बार श्रीला प्रभुपाद हमको पूरा विवरण देते हैं कि कौन से रेलवे स्टेशन पे हमको उतरना चाहिए उस जगह पे जाने के लिए.
You have seen?
आपने देखा है?
You have seen?
विवरण ये डिस्क्रिप्शन.
Yes, you have seen. Many times Prabhupada giving the direction. Step down at such and such train station to go to a place of pilgrimage, many times, all through Chaitanya Charitamrita. Sometimes a path or a road is given.
Prabhupada pura vivaran dete hain ki kaise humko us jagah par jana hai, kaun se station ko lena hai, kaun si gali ko lena hai. Bahut jagah par Chaitanya Charitamrita mein Prabhupada vivaran dete hain.
So when King Pratibhruja returned to Jagannath Puri, Ramananda Roy came with him. Ramananda Roy immediately went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu with great pleasure.
जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी लौटे तब रामानंद राय भी उनके साथ आए. वे तुरंत हर्ष पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए.
Prabhupada explains, all Indian kings are given titles. Sometimes they're known as Chhatrapati, sometimes as Narapati, sometimes as Ashvapati, and so on. The king of Orissa is addressed as Gajapati.
Jagannath Puri ke raja ko Gajapati kaha jata hai, kabhi unko to is naam se unko pukara jata tha.
Upon meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy offered his obeisances. The Lord embraced him, and both of them began to cry in a great ecstasy of love.
श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर रामानंद राय ने उन्हें नमस्कार किया. महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और दोनों प्रेमावेश में आकर रोने लगे.
That's the 16th verse.
16.
Now this is another amazing fact in Gauralila.
ये एक और अद्भुत प्रसंग है गौरलीला में.
Ramananda Roy was allegedly a Sudra.
रामानंद राय एक शूद्र थे.
By external calculation.
अगर भारी दृष्टि से देखें तो.
Beyond that, at Jagannath Puri, he moved to Jagannath Puri in order to have association with Mahaprabhu.
Ramanand Rai Jagannath Puri mein aa gaye the Shri Chaitanya Mahaprabhu ka sang lene ke liye.
Before that, he was down at on the bank of the river Godavari.
Usse pehle,
South India.
Usse pehle Dakshin Bharat mein Godavari nadi ke tat par wo rehte the.
What's the name of that city?
Kisi ne dekha hai wo jagah?
The name of the city where Ramananda Roy used to stay is now a city, but at that time it was just a village. Hey, Panaji.
Premananru.
Talking to our Mayapur Pandit here. Yeah, Rajmundri. Yes, thank you very much.
Rajmundri jagah par ho rahe the.
We have a very first-class temple there on the other side of the Godavari River. It's a huge river.
बहुत सुंदर मंदिर है हमारा इस्कॉन का वहाँ पे उस गोदावरी नदी के पास बहुत बड़ी है गोदावरी नदी.
This is big as the Ganga Devi.
गंगा देवी जैसी बड़ी है उनका प्रभाव.
In Rajmundri, the river is more than a kilometer wide, maybe 2 kilometers wide, very very large at that point.
राजमुंद्री उस जगह पर जो नदी है करीब 1 किलोमीटर चौड़ाई में है.
It was very interesting. I was present for the grand opening of the temple at Rajmundri, ISKCON temple at Rajmundri. There was a temple before, much lower level.
Maharaj bata rahe hain ki Maharaj upasthit the jab Rajmundri mein mandir ka udghatan hua tha. Pehle bhi mandir tha, lekin chota mandir tha.
There was a wonderful pastime of Jagannath.
Jagannath ji ka ek bahut sundar wahan pe leela hui.
There was no Jagannath temple at Rajmundri.
पहले राजमुंद्री में कोई जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं था.
The temple president heard that Jayapataka Swami was coming with 150 followers on the famous safari program. I was there. I was part of that party.
तो जो वहां के अध्यक्ष थे राजमुंद्री के, उन्होंने सुना कि जयप्रताप स्वामी महाराज अपने 150 शिष्यों के साथ वहां पर आ रहे हैं यात्रा के लिए.
So he thought, see, Lord Jagannath gave him some inner inspiration. It's a wonderful pastime.
Maharaj bata rahe hain, Maharaj wahan pe upasthit the aur Jagannath ji ne un adhyaksh ke hriday mein kuch inspiration diya.
Oh, Jagannath is coming, then we have to have Rath Yatra.
To unhone socha ki Jagannath ji aayenge to hum Rath Yatra karenge.
I mean, the devotees are coming, 150 devotees, we have to have Rath Yatra.
To bhagwan aa rahe hain to humko Rath Yatra karni hogi.
Only problem is we don't have any Jagannath. Only problem is we don't have any Jagannath.
समस्या बस एक थी कि हमारे पास जगन्नाथ जी नहीं है रथ यात्रा.
So that time, Jayapataka Maharaj installed Jagannath Baladev and Subhadra.
तो उस समय जयप्रताका महाराज ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्थापना करी.
Big deities.
बहुत बड़े विशाल विग्रह.
So that was a wonderful pastime.
बहुत सुंदर ये लीला हुई थी.
So then I went for the grand opening of the new temple. They needed a larger temple. They built a beautiful, gorgeous new temple. It's not very big. It's temple room is not any larger than ours, but it's a very nice temple room, very opulent.
तो महाराज बता रहे कि महाराज उपस्थित थे जब राज मंदिर में बड़ा मंदिर बना, बहुत सुंदर विशाल मंदिर बना है महाराज बता रहे.
So there was a grand opening for that temple. I was present for that, and Jayapataka Swami and the party was there.
Jayapataka Swami महाराज वहाँ पे थे, महाराज स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे जब मंदिर का उद्घाटन हुआ.
So at that time there was a giant flood. Godavari was on a rampage.
तो उस समय बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी गोदावरी नदी के अंदर.
There was flood in all directions.
चारों दिशाओं में पानी था बाढ़ का.
The old temple itself was flooded.
जो पुराना मंदिर था वो पूरा डूब चुका था बाढ़ में.
But because the new temple was not ready yet and Jagannath had not been formally installed new temple, they wouldn't move him, even though so the pujaris were wading up to their waist in the water to serve Lord Jagannath. Amazing.
क्योंकि अभी नया मंदिर बना नहीं था और जगन्नाथ जी की उन्होंने स्थापना नहीं की थी वहां पर, तो वो जो पुजारी थे वो पुराने मंदिर में ही जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे थे. पानी उनकी छाती तक था और वो सेवा कर रहे जगन्नाथ जी की.
At the grand opening of the new temple, the flood was all the way up to the new temple, which was much higher than the old temple.
जो नया मंदिर बना उसका जो स्तर था वो बहुत ऊपर रखा गया था पुराने मंदिर से.
But the whole ground floor of the new temple was flooded.
लेकिन फिर भी जो उसका सबसे नीचे का सतह था उस बड़े नए मंदिर का वो पूरा डूब गया पानी में.
They built bamboo scaffolding onto the roof of the what was going to be the new entrance. They built bamboo scaffolding. You know, scaffolding means like what they make for painting and all that.
तो उन्होंने बहुत सारे बांस के बहुत सारे लकड़ियां लगाई वहां पे ऊपर जाने के लिए.
So that was the only way we could enter the temple room because of the huge flood all the way up to the bottom of the temple room itself.
क्योंकि इतनी बाढ़ आ चुकी थी उस मंदिर में हम प्रवेश नहीं कर सकते थे और उन्हें वो बांस के बनाए
लकड़ियां जिससे गोदावरी
तो ये गोदावरी नदी है जो बहुत पवित्र नदी है.
Actually, Jayapataka Maharaj had a very nice revelation about that.
तो जयपताका महाराज को एक बहुत सुंदर अनुभूति हुई उस चीज के बारे में.
He said that Godavari had flooded the ISKCON property to purify it, just the transcendental vision.
जयपताका महाराज ने बोला कि गोदावरी ने हमारी इस संपत्ति के ऊपर बाढ़ आई है उसको शुद्ध करने के लिए.
Because where the temple was built, it was land donated by the city.
तो जहाँ पे मंदिर बना था तो वहाँ पे किसने दान दिया था उस मंदिर के लिए.
Used to be part of the cremation grounds.
वो पहले cremation शमशान का भाग था.
Not auspicious for establishing a temple on cremation ground.
तो मंदिर के लिए तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है ऐसी जगह पे बनाना.
So Godavari solved the problem by flooding the whole area of the ISKCON property completely flooded.
तो गोदावरी नदी ने उसका समस्या को हल कर दिया उस पूरी जगह पर बाढ़ लाकर जहां पे इस्कॉन का संपत्ति थी.
So Jayapataka Maharaj made the point that she came just to purify the ISKCON land, just see.
जयपताका महाराज ने कहा कि गोदावरी आई इसलिए थी हमारे इस्कॉन की संपत्ति को शुद्ध करने के लिए.
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा were moved to the new temple.
और उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को नए मंदिर में स्थापित किया गया.
These are also pastimes, you know.
ये सब लीलाएं हैं भगवान की.
It's not mundane. If somebody thinks that mundane, that's then their spiritual life will be like eating dry rice cakes.
तो ये सब भौतिक लीलाएं नहीं है, ये सब आध्यात्मिक लीलाएं हैं.
So we'll read a little more. Upon meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy offered his obeisances. The Lord embraced him and both of them began to cry in the great ecstasy of love. That's verse 16.
प्यार संख्या 16. श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर रामानंद राय ने उन्हें नमस्कार किया. महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और दोनों प्रेमावेश में आकर रोने लगे.
It was very significant that Mahaprabhu, the strict acharya, was embracing Ramananda Roy, who was supposed to be a sudra.
तो बहुत ही रुचिकर है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो इतने सख्त आचार्य का भूमिका कर रहे थे वो एक शूद्र रामानंद राय भारी रूप से उनको आलिंगन कर रहे हैं.
Didn't make any difference to Mahaprabhu that he was externally a sudra. Mahaprabhu could care less. You see, he was breaking the backbone of casteism.
महाप्रभु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो भारी रूप से शूद्र हैं. महाप्रभु जो जातिवाद था उसकी कमर तोड़ रहे थे.
That was made very obvious by his establishing Haridas Thakur as Namacharya.
और ये और स्पष्ट हो गया जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि दी.
There was one interesting incident where a devotee was talking to some Muslim.
तो एक बार एक भक्त था वो कुछ मुसलमान लोगों से बात कर रहे थे.
I don't know, something happened, maybe he was disrespected somewhere.
तो कुछ ऐसी वार्तालाप हो गई थी उनके बीच में.
He was chastising the devotee. He knew about Haridas Thakur. He knew Haridas Thakur was a Muslim.
जो मुस्लिम थे वो जानते थे कि हरिदास ठाकुर थे वो भी एक मुस्लिम थे.
It was something like, more or less, what are you doing? Don't you know your Namacharya was a Muslim? Haridas Thakur, he knew. But the devotee wasn't thinking.
तो वो भक्त को बोल रहे थे तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे जो नामाचार्य हैं वो एक मुस्लिम थे.
So Ramanand Roy was a sudra by external calculation.
रामानंद राय थे वो भारी दृष्टि से शूद्र.
Not only that, but what was his service to Jagannath?
और उनकी सेवा क्या थी जगन्नाथ जी के लिए?
Do you know his service to Jagannath?
आप जानते हैं प्रेमानंद प्रभु सेवा क्या थी?
Do you know his service to? No.
हरे गिरि भक्त प्रभु. Serving.
Yes. हरे बोल.
हरे बोल.
I used to massage the naked Devidasis, the maid servants who would dance for Jagannath. Ramananda Roy used to massage them naked. Just see, the same Strikacharya that banned Junior Haridas, but he didn't mind that Ramananda Roy was massaging naked women. He'd never rejected them on that basis, never.
तो रामानंद राय की सेवा थी जगन्नाथ जी के लिए. जो देवदासियां थी उनके नग्न शरीर को वो मसाज किया करते थे क्योंकि वो जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते थे. तो महाप्रभु इतने सख्त आचार्य थे फिर भी उन्होंने कभी रामानंद राय का बहिष्कार नहीं किया इस चीज के लिए.
So this is one of those don't try this at home stories.
तो ये ऐसी कथन है, ऐसा कहानी है जिसको हमें अपने घर पे प्रयास नहीं करना चाहिए.
You know that saying, don't try this at home, means don't imitate.
इसका अर्थ है कि हमें इसका नकल नहीं करनी चाहिए.
It's an American saying, don't try this at home.
हमें इसकी नकल नहीं करनी.
Because ordinary devotees can't do like that. But he was Mahabhagavat. He was transcendental. Mahabhu knew that. So therefore, he was not disturbed. The same Mahabhu who rejected Junior Haridas had no problem with Ramananda Roy massaging naked women. No problem at all. Same strict acharya. So we can't imitate.
साधारण भक्त को इसके नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि रामानंद राय महाभागवत थे. महाप्रभु कोई दिक्कत नहीं थी रामानंद राय की ऐसी सेवा से जबकि छोटा हरिदास के छोटी सी गलती महाप्रभु ने सहन नहीं करी.
So, we'll stop there. We've run out of time. So next time, we will begin with text number 17 next time.
तो अभी समय समाप्त हो गया है तो अगली बार हम 17 प्यार से प्रारंभ करेंगे.
Where the devotees were astonished to see the intimate dealings of Ramananda Roy. Mahabhu, how he was having such a loving, intimate relations with Ramananda Roy, because the devotees knew he was supposed to be a sutra. But point is, Mahabhu didn't care.
कि आगे हम देखेंगे कैसे सब भक्त थे बहुत ही वो बहुत अचंभित हो रहे थे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के मिलन को देखकर उनके भाव को देखकर जानते थे कि जो रामानंद राय वो एक शूद्र हैं.
So we'll stop there. Any questions, comments?
कोई प्रश्न है कोई टिप्पणी है.
Okay, thank you very much. Jagaguru Sarabhavana Gija Garantara Shri Chaitanya Charamrita Gija Ita Goa Premanandi
Param Prujane Bhakti Madhure Govind Sai Maharaj Ki.